तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार,
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। हमारे बीच में राजयोगी आदरणीय भ्राता राजू जी पधार चुके हैं, हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहां से आप आए हैं इतनी ही दूरी से आज भाई साहब हमारे बीच में विशेष आपको प्यार और श्रीमत की धारणा कराने के लिए हैदराबाद से आ रहे हैं। अति व्यस्त होते हुए हमें उन्होंने टाइम दिया है। भ्राता जी 1960 से बाल्यकाल से ही ज्ञान में चल रहे हैं और आप 1972 में मधुबन में समर्पित हुए। दीदी मनमोहिनी जी की नजर आप अमूल्य हीरे पर पड़ी और उन्होंने आपको ज्ञान रत्नों को चुनना, लिखना, प्रश्न उत्तर निकालना, स्लोगन वरदान, मुरली से खोजना सिखाया। पहले आप सबको मालूम है टाइप मशीन और इतना सारा टाइपराइटर इत्यादि नहीं थे, तो दादी जी दीदी ने ही आपको मुरली की टाइपिंग की ट्रेनिंग दी और प्रेरित किया। और आज हम देख रहे हैं कि आप फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के मुख्य हैं ही, लेकिन रूरल डेवलपमेंट विंग के भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और आज जो मुरली प्रतिदिन हमारे हाथ में जाती है, पत्र पुष्प जाता है, अन्य सभी जो मम्मा डे की विशेषताएं गई वो आप सारी चुन चुन कर बाबा की मुरलियों से एकत्रित करके हम लोगों को भेजते हैं। कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि F कंप्यूटर में दबाओ, तो बाबा ने फरिश्ते के ऊपर जो भी शिक्षाएं दी होंगी ऐसा इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। तो दिन रात ज्ञान रत्नों के खेलते हैं और सबको ज्ञान रत्नों से खेलने की अनोखी कला सिखाते हैं। ऐसे सरल चित पूरे भारतवर्ष की क्या पूरे विश्व की आप मनसा सेवा करते हुए और देश विदेश की सेवाएं साकार रूप में भी कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे श्रीमत से ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ कैसे बनता है, अपने अनुभव युक्त सार गर्भित ज्ञान रत्न मोती हम सबको प्रदान करें आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सभी बाबा की तपस्या भूमि में योग के गहरे गहरे अनुभव कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा है ना। पांडव भवन की भट्टी, पांडव भवन की भट्टी का गोल्डन चांस आपको मिला और मुझे आपके पास हैदराबाद में भट्टी करने का चांस मिला। बहुत अच्छा मौसम था इस समय, बरसात बीच बीच में पड़ जाती थी इसलिए ठंडक थी वहां ज्यादा, यहां से ज्यादा ठंडक लग रही थी। कुमारों की दो दिन की भट्टी शांति सरोवर में थी। यहाँ कितने कुमार बैठे हैं, हाथ उठाओ। बहुत बैठे हैं क्या? बहुत अच्छा है। चलो यहाँ क्लास आपको मिल गया, मिल लिए। और कल पूरा उन्होंने अपने सभी सेंटर्स के भाई बहनों को भी बुलाया था मम्मा डे के निमित्त, तो सुबह से दोपहर तक उनकी भट्टी थी। सभी 700-800 लोग थे और कुमार 100 के लगभग थे, क्योंकि कुछ इधर आ गए, कुछ और कोई कार्यक्रम में चले गए और उधर शायद राम श्लोक भाई भी सिकंदराबाद की तरफ पहुंचे हैं, तो वहां भी भट्टियां चल रही थी। तो ये भी बाबा ने हम सबको समय की सूचना अनुसार तपस्या करने का चांस दिया है। अच्छी तपस्या करो और अपने आप को संपूर्ण पावन बना लो। तो सभी ने लक्ष्य के अनुसार क्लासेस तो की, लेकिन तपस्या भी की है। मैं जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित होकर, बाबा जो है जैसा है उसके समान बन जाएं, ये है हमारी भट्टी। तो बाबा के समान बनने के लिए कितने प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा है, हर एक कोई न कोई लक्ष्य लेकर के मनन चिंतन भी करते हैं, रू रिहान भी करते हैं, एकांतवास भी करते हैं, विशेष ज्वालामुखी तपस्या भी करते हैं। तो बाबा की वर्तमान श्रीमत तो यही है कि अंतिम समय की समीपता के प्रमाण अब जल्दी जल्दी अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लो। श्रीमत यही है ना। बाकी बाबा ने हम सबको, जब से हम बाबा के बने हैं, श्रीमत से ही हमारी पालना हो रही है और उसके आधार से ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन बनी है। श्रीमत क्या है, कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है श्रीमत? श्रीमत है ही मुरली, और मुरली ही ब्राह्मण जीवन का सांस है, उसके बिना तो रह नहीं सकते ना। तो मुरली, जिनका मुरली से प्यार है उनका बाबा से प्यार है, और मुरली को अगर ध्यान से सुनते हैं तो बाबा ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसके लिए अपनी मत न दी हो। श्री श्री की मत, श्रीमत मुरली के द्वारा ही हमको मिलती है। बहनें अपनी राय दे सकती हैं लेकिन मत नहीं दे सकती हैं, राय और मत में भी अंतर है। बाबा हमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं और वो मत दे रहे हैं आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। बाबा की मुरली के अंदर चार मुख्य सब्जेक्ट हम रोज पढ़ते हैं। साकार मुरली चारों सब्जेक्ट को कवर कर लेती है। अव्यक्त बाबा ने किसी एक विशेष टॉपिक पर बच्चों को संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रेरणाएं दी, लेकिन साकार की मुरलियां पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट उसमें बहुत स्पष्ट बाबा ने हम सब के आगे रखी हैं। और ज्ञान के लिए जो हम सब पढ़ रहे हैं, जो हमें ज्ञान मिला, समझ मिली, उस समझ के पीछे उद्देश्य क्या है? आत्मा का ज्ञान दिया, अपना घर का ज्ञान दिया, स्वयं का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, आत्मा के कर्मों का, गति का ज्ञान दिया, पुनर्जन्म का ज्ञान दिया, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान दिया, कितने ज्ञान रतन दिए हैं, कितना हम सबको ज्ञान से भरपूर किया है। तो इस ज्ञान की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बोलो, इसके लिए क्या श्रीमत है? क्यों बाबा हम सबको ज्ञान की सब्जेक्ट में नंबर वन बनाना चाहता है? गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। योग का आधार भी ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं है तो योग लगेगा ही नहीं, कहाँ लगाएंगे, किससे लगाएंगे? इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं, जिनके पास सब प्रकार का ज्ञान है, समझ है, उसकी विशेष निशानी बताओ, कौन बताएगा क्या निशानी होगी? जी निश्चिंत रहेगा और अंतर्मुखी रहेगा, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ऑब्जेक्ट बताओ, क्या है लक्ष्य उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? बाबा जो हम सबको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, वो समझ ये कहती है कि अब कोई भी नया बंधन क्रिएट नहीं करना। ज्ञान मिला ही है बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए। आत्मा का सबसे पहला इस देह के साथ बंधन हो गया, बंधी हुई है इसके साथ, इसकी कर्म इंद्रियों के साथ दूसरा संबंध हुआ, वो बंधन बन गया। कलयुग के अंदर संबंध बंधन का रूप लेते गए, सतयुग के अंदर संबंध बंधन नहीं थे, वो सुख के संबंध थे, लेकिन कलयुग के अंदर जो हमने संबंध बनाए उनमें बंधन ही बंधन बन गया। बंधन माना दुख, और अगर कोई नया बंधन बना लिया तो उसमें बंधते जाएंगे, एक के बाद एक चक्कर लगेगा ऐसे। इसलिए पहला ज्ञान बाबा ने अगर आत्मा का पक्का कराया कि तुम एक आत्मा हो, इस समान में रहो, इस स्थिति में स्थित रहो, तो ये देह के बंधन से छूट जाओगे, इससे मुक्त होते जाओगे। तो ये ज्ञानी तू आत्मा इस देह के बंधन से मुक्त होने का पहला पुरुषार्थ करती है श्रीमत। ये है पहली श्रीमत हमको बाबा ने दी, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, मुझे एक को याद करो, पहली श्रीमत है। और उस श्रीमत के अनुकूल जो आत्मा इस समझ से इस ज्ञान से अपने आप को देहभान से डिटैच रखती है, वो देह के बंधन में, संबंधों के बंधन में बंधती नहीं है। कोई कैसा भी आत्मा हो, अभी त्याग की मुरलियां इतनी गहरी गहरी सुन रहे हैं हम सभी, त्याग का कोर्स बाबा ने छठा लेसन कल पढ़ाया, उसमें एक बात बहुत अंडरलाइन कराई है कि किसी भी आत्मा से विशेष प्रभावित हो जाना भी बंधन है, और किसी आत्मा से नफरत करना, घृणा द्वेष रखना, किनारा कर लेना, वो भी एक बंधन है, क्योंकि उसकी याद आती रहती है। जब बैठेंगे योग में तो बंधन में बंधी हुई आत्मा उधर खींचेगी, जाएगी उधर। कहते एक नैया पर सब सवार थे और सब साधन थे, उस पर चप्पू चलाते ना ऐसे ऐसे नाव पर बैठ करके, वो भी चला रहे थे और हिल भी रही थी, डुल रही थी। सवेरे उठे तो देखा जिधर खड़े थे वहीं खड़े हैं। कारण क्या था? वो जो लंगर बंधा हुआ होता है, नाव को बंधा बांध देते हैं, उसको खोलना भूल गए। हम ज्ञान योग की नैया में तो बैठ गए हैं, लेकिन चेक करना ये लंगर छोड़ा है कि कहीं ना कहीं बांध के रखा है। हिल डुल रहे हैं, चल रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि किसी न किसी बंधन में कहीं न कहीं फंसी हुई है। इसलिए योग में मेहनत लगती है। कोई भी कर्म बंधन अगर नया क्रिएट हो रहा है, पुराने तो बने हुए चुकतू करने का समय है। बनाए तो हमने 84 जन्म ही है, 63 जन्म में देहमान के कारण विकारी संबंधों में बनते गए, सतयुग और त्रेता में भी तो संबंध बने, तब तो नीचे गिरे। तो 84 जन्म ही कहेंगे नीचे, धीरे धीरे कलाएं गिरते गिरते अभी एकदम नो कला हो गई आकर के, बंधते आए बंधते आए। अब बाबा आया है ज्ञान दे करके, समझ दे करके, हे आत्माएं अब बंधना नहीं, अभी जो बांधे हुए बंधन थे उनको कैसे भी करके ज्ञान योग की कैंची लगाओ और काटो। तो सभी ध्यान रखना, बंधे हुए बंधन जो थे, बने हुए थे, वो तो काटने पड़ेंगे। उसके लिए कुछ मेहनत है, तपस्या है, संकल्प में दृढ़ता है। लेकिन किसी भी आत्मा से विशेष प्रभावित होकर के कोई नया संबंध जोड़ करके बंधन नहीं बनाना। बना हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करके तपस्या करके उसको काट देना। घर का ज्ञान दिया, ब्रह्मा का ज्ञान दिया, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान दिया, और ये सब ज्ञान अगर उसकी गहराई के अंदर आप जाएंगे तो श्रीमती यही कहती है, हे आत्माएं, हर आत्मा के पार्ट को जरूर देखो, लेकिन पार्ट देख करके उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके पार्ट देखना। ज्ञान दे करके बाबा ने हम सबको एक तरफ नॉलेजफुल बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, साक्षी दृष्टा बनाया। श्रीमती ये कहती है, हे आत्माएं, तुम सबके साथ पार्ट प्ले करो, अच्छे से अच्छा पार्ट बजाओ, सब संबंध निभाओ, लेकिन दृष्टा बन करके, साक्षी होकर के खेल की रीति से खेल खेलो। जहां पर मैं और मेरापन आ गया वहां वो बंधन क्रिएट हो जाएगा। मेरा समझने लगे कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा किसी भी, मेरे में बुद्धि गई, धन दौलत में भी गई, मकान दुकान में भी गई, साधन सुविधाओं में भी गई, और वो मेरा शब्द उच्चारण होते ही बंधन शुरू हो गया। इसलिए उसमें पार्ट प्ले करते हुए कितना मैं न्यारा रहता हूं, कितना साक्षी होकर के इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराता और दूसरी आत्माओं के पार्ट को दृष्टा बन करके देखता हूं। देखो जरूर, कहां जाएंगे, रहना साथ है, पार्ट प्ले करना है, सन्यासी भी नहीं बाबा ने बनाया, छोड़ के चले जाओ, घर बार भी नहीं छोड़ो, बिजनेस भी नहीं छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन फंसना नहीं। इसलिए मत कहती है, फंसना नहीं और किसी को अपने में फंसाना नहीं। कई फंस जाते हैं, कई फंसा लेते हैं, ध्यान रखना। बहुत ऊंची श्रीमत बाबा की है, क्योंकि अब वापस जाने का समय है। अगर बंधे हुए होंगे तो जाने में बहुत मेहनत लगेगी। अंत मति सो गति होती है। शरीर छोड़ने के समय अगर कोई बंधन होगा और उधर खिंच गई बुद्धि, तो गति भी वैसी ही होगी, भटकना पड़ेगा। या जन्म लेंगे तो तुरंत जन्म और तुरंत मौत, अंत समय है ना, हिसाब किताब चुकतू करने के बड़े से रास्ते बाबा ने बनाए हैं। जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मौत, बहुत बड़ी सजा है, तो गर्भ के अंदर ही सजाएं देता है। जो भी कर्म किए उसकी सजा जल्दी जल्दी मिलती है। इसलिए अंत मति सो गति का ध्यान रख करके ज्ञानी तो आत्माएं जो बंधन बने हैं उनको चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूं जब एकांत में आप बैठते हैं, मधुबन में भी एकांत में अगर गए होंगे, यहां भी हैं, सबके बीच में भले हैं, लेकिन एक के याद के एक के अंत में चले जाओ और एकांत में जाकर के जिधर ये मन की तार जाती, बुद्धि जाती, चेक करो क्यों जा रही है, किधर जा रही है, क्या हिसाब है इसके साथ, कुछ तो होगा तब तो जा रही है, कहीं स्नेह है, कहीं संबंध है, कहीं कुछ लेन देन किया है। अगर बुद्धि जा रही है, माना वो बंधन है, बार बार खिंच रही है, योग के समय वहां जा रही है, पढ़ाई के समय भटक रही है, चलो कोई कार्य व्यवहार है, जवाबदारियां हैं, ड्यूटी है, और उस अनुसार, उस समय अनुसार आप उसको सोच रहे हैं, चल रहे हैं बुद्धि में संकल्प, अलग बात है। लेकिन जब इतने अच्छे संगठन में, इतने अच्छे वातावरण में कमाई करने के लिए बैठे हैं, फिर भी वो बंधन अपनी तरफ खींच रहा है, माना वो हमारा कोई पुराना रहा हुआ हिसाब किताब है, उसको चुकतो करना है, उस बंधन को काटना है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान देंगे, जो भी हम ज्ञान सुना है, जो भी हम सुन रहे हैं, उन सब के पीछे उद्देश्य यही है कि हर आत्मा अब बंधन से मुक्त हो जाए, तब उड़ेगी, तब बाबा के साथ चलेगी। तो ये श्रीमत बाबा की ध्यान रखना, हे आत्माएं, इस जीवन में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मुक्त और जीवन मुक्त सतयुग में बनेंगे, उसका क्या फायदा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ जीवन मुक्त स्थिति है, सतयुग में देवताएं जीवन मुक्त हैं, लेकिन उनको बंधन का पता ही नहीं है। मुक्त का सुख तो ले ही नहीं सकेंगे। इस समय अगर हम मुक्त स्थिति में रहें तो हमको पता है बंधन वाली आत्माएं कितनी परेशान हैं, कितनी दुखी हैं, कितना भटक रही हैं। भले ऊपर से दिखाएं हम बहुत सुखी हैं, लेकिन अंदर अंदर वो घुटती हैं। और हम मुक्त आत्माएं कितना बिल्कुल फ्री बर्ड, एकदम कोई भी चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, बेफिक्र बासा। तो बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों को जरूर चेक करना, नहीं तो बंधन जो है फ्री नहीं रहने देंगे। अब योग की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है, जो बाबा इतना मेहनत करा है योग के ऊपर, भट्टियां करा रहा है, तपस्या कराता है, कितनी श्रीमत देता है, बच्चे आत्मा समझ करके मुझे याद करो, मन मना भव मेरे में ही बुद्धि लगाओ, एक बाबा दूसरा न कोई, यही तुम्हारी तपस्या है ना, एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि में ना आए, क्यों ये सब बार बार कह रहा है, किस लिए? जिस स्वरूप में आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई थी, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, जब हम इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए परम धाम से आए, उस परम धाम की जो आत्मा की प्योरिटी है, उस घर की, उस प्योरिटी के बल से इस शरीर को हमने यहां धारण किया। माँ बाप का अपना बल होगा, लेकिन आत्मा अपनी प्योरिटी के आधार से इस सृष्टि मंच पर आई, बहुत प्योर थी, सतो प्रधान, सातों गुणों में संपन्न थी, और संपन्नता और भरपूरता के कारण 16 कलाएं थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, संपूर्ण पावन, और फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं गिरी। कलियुग के अंत में जब बिल्कुल पतित बन गई, विकारी बन गई, तमोगुणी बन गई, तब बाबा की श्रीमत मिली, हे आत्मा तुमको पावन बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है, सतो गुणी बनना है, श्रीमत दी बाबा ने, और वही श्रीमत अंडरलाइन कराता है। आप जितने भी प्रकार के नियम मर्यादाएं धारणाएं अपना रहे हैं, कभी कभी मैं पूछता हूं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों? दो दिन पहले मैं एक जगह गया था, यहाँ के हैदराबाद के पहले 21 तारीख को हमारा एक यहाँ प्रोग्राम था नजदीक में पालनपुर में, एक युगल आता है ज्ञान में, बड़ा सेवाधारी, झाड़ू पोछा करेगा, घर की सारी सफाई करेगा, बगीचे की सफाई करेगा, मुरली सुनेगा, अमृत वेला करेगा, सब नियम पालन करता है। लेकिन युगल आके मेरे को बोलती, भाई जी पवित्रता में हम लोग कच्चे हैं, पवित्र नहीं रह पाते, सीधा ही आकर के। मैं देखा हमारी जो मूल पाप फाउंडेशन है, सेवा कर रहे हैं, अमृत वेला उठ कर रहे हैं, खान पान की परहेज कर रहे हैं, दूसरे के स्थान पर जा नहीं रहे हैं, आखिर ये सब नियम पालन कर रहे हो, सारी श्रीमत पालन कर रहे हो, लेकिन उस श्रीमत जो दी है बाबा ने, उसके पीछे लक्ष्य क्या है, किस लिए दिया है? पावन बनाने के लिए ना। अब पावन बनने में ही हम अलबेले हैं और दूसरे सब पालन कर रहे हैं, क्या फायदा है श्रीमत का पालन करने में? इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अंडरलाइन करना, क्योंकि है बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, कम नहीं है। चलो 3 मिनट के लिए बाबा के पास चलो। तो बाबा की श्रीमत मिली, बी होली बी योगी है ना श्रीमत, पहले दिन ही ये पाठ पक्का कराया जाता, ब्राह्मण जीवन का पहला कायदा, पहला नियम, पहली मर्यादाएं, पवित्र बनो, योगी बनो, ये श्रीमत है। और इस श्रीमत की पालना के लिए, इसमें मजबूत बनने के लिए सब प्रकार की निजी धारणाएं हैं। ये ज्यादा तेज मिर्च मसाले तामसिक राजसिक भोजन नहीं खाओ, क्योंकि इससे इंद्रियों की उत्तेजना होती है। इसके लिए श्रीमद्दी बाबा ने किसी भिखारी के हाथ का नहीं खाओ, क्योंकि वो आपके मनसा को अपवित्र बनाएगा, मन के अंदर शीतलता नहीं रहेगी, उत्तेजना आएगी। इसलिए श्रीमद्दी संग की परहेज करो, ऐसे वैसे के संग में नहीं बैठो जो आपके मन के विचारों में इम्प्यूरिटी भर दें। ऐसा कोई साहित्य नहीं पढ़ो, ऐसी कोई इंटरनेट की माया के बीच में नहीं जाओ, ऐसे कोई दृश्य नहीं देखो। ये श्रीमत मिली, किसलिए मिली? आपकी प्योरिटी में विघ्न न पड़े, इसलिए मिली। लेकिन वो सब हम पालन करें और प्योरिटी की सब्जेक्ट में फेल हो, फायदा क्या हुआ? इसलिए हरेक अंडरलाइन इस बात को करना, ये बाबा की पहली आज्ञा है। और ये आज्ञा इसलिए दी है क्योंकि इसी से ही नई दुनिया की स्थापना होनी, यही हमारी फाउंडेशन सतयुग की नई दुनिया का है। और इस फाउंडेशन में ही अगर हम कच्चे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, खूब सेवाएं कर रहे हैं, सब नियम और दूसरे पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते तो मैं समझता हूं फाउंडेशन कमजोर है, बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। ऊंची मंजिल के राही हैं हम सभी, छोटी मंजिल नहीं है। और इस मंजिल पर पहुंचने के लिए, इसके लिए बाबा कहता है, श्रीमत कहती है, हे बच्चे दृढ़ता से संकल्प करो, मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न तूफान के रूप में आए, मनसा में कुछ भी ख्यालात आ जाएं, क्योंकि किए हुए जो कर्म हैं, संस्कार जो बने हुए हैं, कभी सपनों में अटैक करते हैं, कभी संकल्पों में अटैक करते, कभी वो दृश्य श्रव्य देख लेते हैं, उसके आधार से मन के अंदर उत्तेजनाएं आती हैं, कर्मेंद्रियों में चंचलता आती। लेकिन कुछ भी हो, मुझे इस व्रत को व्रत के रूप में पालन करना है। एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो निर्जल रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, कहते इसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए, वो भी पाप हो जाएगा स्थूल में। अब बाबा कहता है, अरे बच्चे वो तो शरीर के लिए कभी एक आधे दिन भूखा रहो तो अच्छी बात है, क्यों रहते हठ क्यों कर रहे हो? लेकिन ये जो व्रत है जो बाबा ने हम सबको दिया है, हर एक दृढ़ता के साथ इस पर पक्के होकर के बाबा के घर से जाना, कुछ भी अगर संकल्प विकल्प में कभी छोटी मोटी अवज्ञाएं होती हों, तो बाबा कहता है ये अवज्ञाएं अगर हो रही हैं तो जहां पाप है वहां बाप नहीं है, बाबा वहां से किनारा कर लेता है, ये पाप है। बाबा की भाषा में इसको ही पाप कहा है। तो इसको दृढ़ता के साथ पालन करना और उसके लिए प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना, और व्रत लेकर के अपनी वृत्तियों की चंचलता को समाप्त कर देना। तीन चार व्रत ले लो, बहुत सहज हो जाएगा, वृत्तियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी, उसकी श्रीमत है। वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने के लिए पहली श्रीमत क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, जिगर से जिगरी। अगर सच्चे दिल से हम बाबा कहते हैं तो वृत्तियां चंचल नहीं होंगी। अगर संबंध कहीं भी अटके हुए हैं, सब संबंध एक बाबा के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वृत्तियां चंचल होती रहेंगी। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बात करूं, तुमको ही देखूं, तुमको ही अपना हाल सुनाऊं, अगर इस प्रकार की श्रीमत की कोई पालना कर रहा है, उसकी वृत्तियां अपने आप स्थिर और एकाग्र हो जाएंगी। एक बल एक भरोसा, एक बाबा के सिवाय और कोई को भरोसा नहीं रखना, बाबा में संपूर्ण विश्वास, वृत्तियां ठीक हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी। कभी भी कोई निगेटिव इधर उधर की बातें सुनाए, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना, कुछ भी कहे, किसी के लिए भी कहे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ रहते हैं, पवित्र कहाँ रह सकते हैं, कई बातें चर्चा में आ जाती हैं, सुन लेते हैं और उसके आधार से बाबा कहता अलबेले बन जाते हैं। कल मुरली में कहना अलबेलेपन का जो संस्कार है वो इसीलिए आता है, जो किसी की कमी कमजोरियों को नोट कर लेते हैं, कोई कुछ भी किसी की कमी कमजोरी आपके आगे सुनाए कि फलानी ऐसा फलाना ऐसा वो ऐसा करता वो ऐसा करता, माना वो खुद कमजोर है तब दूसरे की कमजोरी का वर्णन कर रहा है। इसलिए अगर हमको अपनी वृत्ति को शांत रखना है, चंचलता को खत्म करना है, तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने मन को चंचल नहीं करो, विश्वास ही नहीं करना है। और कोई भी छोटी मोटी बातें हों तो बाबा कहता है उनको बड़ा नहीं बनाओ, छोटी छोटी बातों को सोच सोच करके बड़ा बना करके भारी नहीं बनो। बड़े से बड़ी बात आ रही है सामने, उसको भी कहो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगर ये श्रीमत है मूल बाबा की जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि छोटी बातों को बड़ा नहीं करो, बड़े से बड़ी बात को छोटा बना दो, कोई नेगेटिव और व्यर्थ बातों की चर्चा करे उसको सुन करके उसको समाओ नहीं, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं दो, एक बाबा में पूरा विश्वास रखो, एक बल एक भरोसा, एक बाबा को ही देखूं, एक की सुनूं, एक को फॉलो करना है। जैसे मम्मा की आज कहानियां हम सुन रहे हैं, एक बार बाबा ने ही अव्यक्त बाबा ने सुनाया था कि इतने थोड़े समय में मम्मा किस पुरुषार्थ से मम्मा बन गई, और उसने श्री नारायण से भी आगे अपना पद ले लिया, श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त किया, जबकि वो धन लेकर के नहीं आई, धन लक्ष्मी बन गई, विद्या की देवी बन गई। किस विशेषता के आधार से बन गई? एक वृत्ता, एक बाबा के सिवाय और कोई भी बुद्धि में नहीं रखा, सदा तुझे ही देखती हूं। पता ये जो छोटा हाल है ना, दो गद्दियां थी, अभी तो पता नहीं कुर्सियां डाली हैं शायद, दो गद्दियां थी, एक पर मम्मा बैठती थी, एक पर बाबा बैठता था। पहले मम्मा मुरली चलाती थी और बाबा बाहर से जब अंदर घुसता था आ जाता था, गेट तक देख लेती थी बाबा आ गए, मम्मा एक शब्द भी नहीं बोलती थी, चुप, बाबा के सामने एक शब्द भी नहीं। बच्ची बोलो, सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बहलाओ, पूरा करो, बाबा आ गया ना, मैं नहीं बोलूंगी, चुप हो जाती थी। और जब बाबा की मुरली शुरू होती थी तो सुनाया होगा शायद, यहां किसी ने सुनाया नहीं, सुनाया बात, मम्मा बाबा की तरफ ऐसे जैसे चांद को चकोर देख रहा है, कुछ नहीं दूसरा देख रही, इतने सब बच्चे हैं सामने, बाबा सबके आगे मुरली चला रहा है, ज्ञान डांस कर रहा है, इन बाबा केवल एक बाबा को, मम्मा केवल एक बाबा के सिवा कोई को नहीं देखती थी, दिल में एक बाबा के सिवा कोई नहीं रखा, इसलिए सबसे आगे चली गई। और जितनी सेवाएं की अगर कोई ने महिमा कर दी तो कहा नहीं वो करा रहा है, मेरी महिमा नहीं है, ये स्वीकार नहीं की, गंभीरता की देवी बन गई, इसलिए धन देवी बन गई। कई करते हैं, थोड़ा करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे, ढंग से लगाया धन लगाया तो सब वर्णन कर देंगे, मन से किया तो वर्णन करेंगे, मैं बहुत अच्छा आज योग किया, आज इसको योग का दान दे के आए, क्या योग का दान तुम दोगे? कोई धन लगाएंगे, हमने देखो मकान बना के दे दिया, हमने सेंटर बना के दे दिया, वो जितना दिया जितना किया, बाबा कहता उसी समय हाफ हो गया, वर्णन चिंतन किया माना गया, गुप्त दान महापुण्य। तो मम्मा ने इतना किया यज्ञ को आगे बढ़ाने में, इतनी जो विघ्न आए बाधाएं आई कि स्थापना में तो बहुत सहन करना पड़ता है, और सब बातों में नंबर वन आगे, सब में आगे, जहां पर कोई हंगामा हुआ जाओ मम्मा आप देखो, कोर्ट कचहरी हुई मम्मा जा रही है, कोई भी हुआ कुछ भी केस हुआ, और दुर्गा बन करके शेरनी बन करके ललकार करके उसको समाप्त करके आ गई। आपूर्ण की कहानी सुनाई, सुनी है? नहीं सुनाई होगी किसी ने, नहीं सुनाई ना, यहाँ कल मैं सुनाया वहां पर, कल माताओं का ऐसा भाई बहनों क्लास था ना हैदराबाद में, सुनाया हमने, कहा देखो इतना बड़ा हंगामा किया, आपूर्ण में हमारा सेंटर खुला ना शुरू शुरू में, तो आर्य समाजी लोग बहुत बिगड़ गए एकदम, कि हमको यहां पर ब्रह्मा कुमारी को आने नहीं देना, रहने नहीं देना। तो जिस मकान में सेंटर था तो उन्होंने सब ट्रक रक लगा दिए कि जितना सामान इनके पास है सब भरो, और बहनों को भी भरो, और सबको दिल्ली में छोड़ के आ जाओ, सारे के सारे हंगामा करने लगे, आके गेट के ऊपर हंगामा करने लगे। भाइयों को बाबा ने पहले कहा तुम जाओ मदद करो, जगदीश भाई गए और एक भाई और गए, तो भाइयों को तो तंग करते हैं। एक भाई को तो बाल लाल मोड़ दिए, गधे पर बिठा करके काला मुंह करके घुमाया, बहुत हंगामा किया। कैसे भी करके ब्रह्मा कुमारियों को यहाँ रहने नहीं देना, खूब तंग कर रहे थे। बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा तुम ही जाओ, और कोई से कंट्रोल नहीं होगा, चिंता नहीं बंद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बाबा का। मम्मा गई, मम्मा जब गई तो उनको तो और चांस मिल गया, अरे इनकी माँ आ गई, इनके ऊपर ही कुछ करो। तो ये दो मंजिल का मकान था, नीचे और ऊपर, तो मम्मा ऊपर जा करके योग में बैठ गई। देवी तो थी यो, दुर्गा देवी, योग में बैठ गई। तो ये सब जितने लोग हंगामा कर रहे थे ना बाहर, खोलो दरवाजा खोलो, खूब ठोक रहे थे, तो बहनें डर रही थी पता नहीं क्या करेंगे अंदर घुसेंगे तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ करके सात आठ लोग घुसे, मम्मा को पकड़ के पहले ले आओ गाड़ी में और फिर सब आ जाएंगे पीछे पीछे। तो जब गए तो इधर उधर ढूंढते ढूंढते मम्मा के कक्ष में पहुंच गए। तो मम्मा तो तपस्या में बैठी थी, कुछ नहीं बोली। आए सामने और मम्मा ने बिछा के रखा था चादर अदर, बैठो बैठो बैठो, बिठा के दृष्टि दी और दृष्टि दी और गुम हो गए सब। बहुत देर तक ऐसे ही चुप शांत बैठ गए जाकर के। अब पीछे जो हंगामा नीचे कर रहे थे कहां गए, कोई जादू तो नहीं कर दिया ब्रह्मा कुमारियों ने, वो डरे हंगामा और करने लगे पीछे। अब वो आए नहीं, वहीं चुपचाप ऐसे बैठ गए योग में। मम्मा दृष्टि उनको दे रही, कुछ नहीं बोली। वो जितने गए थे गुस्से में उतना सब शांत। थोड़ी देर के बाद चुपचाप खिसक करके वापस आए बाहर। तो सबने कहा क्या हुआ, मम्मा नहीं मिली क्या तुम्हारी, इनकी माँ मिली नहीं इनकी। बोला भाई ये ब्रह्मा कुमारियां कैसे भी हों, इनकी माँ तो साक्षात देवी है, उसके आगे तो मैं बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप भाग गए सारे। ये थी शक्ति उसके अंदर, योग की पावर। लेकिन वो योग की पावर होते हुए भी एक वृत्ता स्थिति इसको हम कहते हैं, एक बाबा में विश्वास, एक बल, एक भरोसा। फिर मदद मिली, सरकार की मिली, चीफ मिनिस्टर की मिली, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन केंद्र नहीं हटा वहां से, कितना भी विरोध किया। तो कहने का मतलब है कि मम्मा ने जिस प्योरिटी के बल से, योग के बल से, हम एक बात और सुनाते थे मम्मा की बात, क्योंकि हमारे घर में लौकिक में जब मैं 4 साल का था मुझे याद नहीं है, 35 दादियों को लेके मम्मा गांव में गई थी, 35 दादियां, और सबको बैलगाड़ी पर बिठा के घुमाया था। हाँ, 1:30 बजे रात को पहुंचे। तो हमारी चाचा जी यहाँ हैं, अभी शांतिवन में है, यहाँ से गए। तो चाचा जी कुमार थे, मैं इसलिए बात सुना रहा हूँ प्यूटी की शक्ति कितनी होती है। और इनको ये नहीं पता था, वो तो समझते थे मम्मा माना कुमारी कोई आई है, इतनी कोई निश्चय और विश्वास पहले पहले थोड़ी होता है। लेकिन जब चाचा जी और पिताजी दोनों मिलने के लिए गए सामने, तो चाचा जी कुमार थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, उन्होंने पर मम्मा ने ऐसे दृष्टि डाली तो चाचा जी ऐसे कूद करके उनकी गोदी में चले गए, ऐसे गोदी में लेट गए जैसे बच्चा कोई छोटा लेट जाता है। और पिताजी तो इतने प्योर नहीं थे, वो दूर से खड़े रह गए, उनको हिम्मत नहीं हुई। तो चाचा जी ने उसमें किताब में अनुभव लिखा है, सुनाया होगा शायद, आपके पास आए थे हैदराबाद में भेजा था, उन्होंने एक बात सुनाई है, लिखी है कि मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मम्मा की प्योरिटी ऐसी थी जो मुझे पता नहीं किसने खींच लिया और मैं ऐसे चला गया गोदी में। ये पवित्रता का बल था, योग का बल था। अब ऐसी पवित्रता की श्रीमत है हम सब के लिए, ऐसे प्योर बन जाएं, इसके अंदर कोई भी मैल ना रहे, बस इस मैल को समाप्त करने के लिए तपस्या है, योग है। खूब अच्छी तपस्या करो, कोई भी प्रकार की गंदगी दिखाई दे मन के अंदर, वचन के अंदर, कर्म के अंदर, अगर उत्तेजनाएं हैं, आवेग हैं, आवेश हैं, प्योरिटी की केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में पांचों विकारों और उनके बाल बच्चों के अंदर अगर हम कहीं अटके हुए हैं, माना हम इम्प्योर हैं, प्योर नहीं है। श्रीमत कहती है, बाबा की श्रीमत कहती है, सर्व विकारों को अंश सहित समाप्त करना है। अंश भी अगर रह गया तो वंश बन जाएगा, इसको चेक करो। अंश भी तो नहीं है, इतने शीतल काया वाले योगी बने हैं, योग लगा रहे हैं, काया शीतल नहीं है, अंग अंग शीतल नहीं है, उत्तेजनाएं हैं, आवेग हैं, आवेश हैं, माना योग यथार्थ नहीं है। योग की सिद्धि तीन रूपों में हमें दिखाई देनी चाहिए। एक, अंग अंग शीतल हो जाए, सुगंधित हो जाए, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्तुति हो, महिमा हो या ग्लानी हो, जय हो या पराजय हो, हर चीज में समान स्थिति बन जाए। योगी की स्थिति स्थित प्रज्ञ, समानता आ जाए। देखना, थोड़ी सी कोई ग्लानी करता है तो क्या हाल होता है, सुनी सुनाई भी कह दे आपके लिए ऐसा कोई बोल रहा था तो उस समय क्या होता है। मंजिल है, सहज बात नहीं है। बाबा के तक ग्लानी कहने वाले पर फूल चढ़ाओ, ग्लानी कहने वाले को गले लगाओ, श्रीमत तो बहुत मिली है, लेकिन प्रैक्टिकल योगी अगर है तो उसमें समानता आती जाएगी। कुछ भी कोई करे, अगर हम श्रीमत की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, होने दो ग्लानी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। अगर बाउंड्री जरा भी संकल्प में भी हमने क्रॉस की है, अंगूठा भी बाहर निकालना है, निकाला है, तो जरूर रावण आएगा, परेशान करेगा, शोक वाटिका में ले जाएगा। इसलिए श्रीमत की अगर हमने पालना की है, योगी आत्माएं हैं, तो एक तरफ समान स्थिति, दुख सुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, समान स्थिति बनती जाएगी, और दूसरा इंद्रियां शीतल होती जाएंगी, काया शीतल होती जाएगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ भी नीचे ऊपर हो रहा हो, लेकिन कभी भी उत्तेजित नहीं होंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, बहुत सरलता से उस बात को सुन करके पार कर लेंगे। और तीसरा, उसके अंदर इतनी संतुष्टता आ जाएगी, सरलता और संतुष्टता, जैसे सब कुछ प्राप्त करा दिया बाबा ने, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बन जाए। सबसे ज्यादा जो विघ्न क्रिएट हो रहे हैं वो इच्छाओं के वृद्धि के कारण। बहुत अच्छा स्लोगन कहीं कहीं हमारा लिखा हुआ है, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। एक पूरी होती, 10 पैदा हो जाते, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। बाबा की श्रीमत कहती है, बच्चे कामनाएं भी काम विकार हैं, इन कामनाओं पर भी जीत प्राप्त करो, इन सूक्ष्म इच्छाओं पर भी जीत प्राप्त करो। तो हम सब योग की सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो ये सब नियम धारणाएं पवित्रता की स्टेज अपने आप आगे बढ़ेगी, सरलता आएगी, संतुष्टता आएगी, समानता आती जाएगी और शीतलता आ जाएगी, सतो प्रधान स्थिति बन जाएगी। इसके लिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे योग की सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन दो। धारणाएं तो आप सब जानते हो, धारणाएं धर्म के लिए हैं, और धर्म के लिए कहा जाता है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, मरना पड़े कुछ भी छोड़ना पड़े लेकिन धर्म नहीं छूट सकता। सुना है ना कहानियां, हमारे धर्म के पीछे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, धर्म को छोड़ा नहीं। धर्म के पीछे तो कितने युद्ध हुए हैं। मैं एक बार नांदेड़ में गया था, एक गुरुद्वारा है, जैसे अमृतसर में गुरुद्वारा है ना, ऐसे ही दूसरा नंबर गुरुद्वारा नांदेड़ में है, और वहां जो लास्ट गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, उस समय जो मुगलों ने अटैक किया धर्म परिवर्तन के लिए, उन्होंने कुछ भी हो जाए लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके बच्चों को सीधा ही जिंदा ही उनको ऐसे कील से ठोक दिया गया, जिंदा ही। उनकी यादगार बनाई हो, मुझे उसके अंदर ले गए कि देखो आप यहाँ पर इनके बच्चों को मुसलमानों ने, मुगलों ने कील से ठोक दिया जिंदा है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा इन्होंने, मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। आज वो गुरुद्वारा कितना प्रसिद्ध हो गया है, सब दर्शन करने वहां जाते हैं। तो बाबा भी कहता है अरे देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसके लिए थोड़ा सहन करना पड़ रहा है, सहन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ त्याग करना पड़ रहा है, कुछ सहन करना पड़ रहा है, कुछ सामना करना पड़ रहा है, धर्म की स्थापना हम करने के लिए धारणाएं कर रहे हैं। इसलिए कोई भी धारणाएं के लिए कभी लूज नहीं हो जाना, हमारा सत धर्म बन रहा है, देवी देवता धर्म लाने वाले हैं, इसलिए इन धारणाओं के लिए श्रीमत जो मिली है उसको दृढ़ता के साथ पालन करना तो धर्म आएगा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना है, और उन तीनों धर्मों की स्थापना के लिए हम सब ब्राह्मण आत्माएं निमित्त हैं। तो इसलिए बाबा हमको धारणाओं में मजबूत कर रहा है, और अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा को धर्म पिता है ना, वो संगम पर तो धर्म की बातें, धारणा की बातों पर विशेष अंडरलाइन है अव्यक्त मुरलियों में, जिससे सत्युग और त्रेता में एक सत धर्म पालन करने वाली आत्माएं रह सके। इसलिए अव्यक्त मुरलियां धारणाओं पर विशेष ध्यान संपूर्ण रूप से बाबा हम सबका खिंचाता है। फिर सेवा, सेवा के लिए बहुत सारी श्रीमत हैं, और श्रीमत तो रोज मुरली के अंदर आप सुनते हो सेवा के लिए कितनी मिलती हैं। आज तो सेवा का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन सेवा के लिए मैं इतना ही कहता हूं, सेवा माना सुख देना सुख लेना। सेवा शब्द ही सुख देने और सुख लेने से है। अगर कोई भी सेवा मुझ आत्मा को या दूसरी आत्माओं को डिस्टर्ब कर रही है तो वो सेवा यथार्थ नहीं है। श्रीमत कहती है न दुख दो न दुख लो, न डिस्टर्ब रहो न डिस्टर्ब करो। मास्टर दाता बनो, बेहद में रहो, दयालु और कृपालु बनकर के सेवा करो। श्रीमत है मास्टर दाता बनो, कोई से लेकर के सेवा नहीं करनी, मांग करके नहीं करनी, ये साधन मिले तो मैं सेवा पर जाऊं, ये सहयोग दे तो मैं सेवा करूं। बाबा ने सेवाधारियों को श्रीमत दी है त्याग तपस्या फिर सेवा। सेवा के पीछे साधन सब आएंगे, लेकिन पहले साधन मांग करके फिर सेवा शुरू की तो सेवा नहीं है। इसलिए सेवाधारियां हमेशा ध्यान रखते, सेवा माना त्याग, सेवा माना तपस्या। तो सेवाधारी बेहद में रहें, हदों में न फंस जाएं, तेरे मेरे में न आ जाएं, डिस्टर्ब न हो, डिस्टर्ब न करें, सबको सुख देकर के दाता बनकर के देने की भावना से सेवा करें, और बहुत दया वृत्ति, रहम की वृत्ति। बेचारे कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने भटक रहे हैं, इन सबको कुछ अंचली मिल जाए। जितने प्रकार के हम प्लान बना रहे हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य यही है, कम से कम बाबा आया है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता इस सृष्टि पर आया है, इनको पहचान तो मिल जाए, कुछ तो अंचली ले लें, कुछ तो अपना अधिकार प्राप्त कर लें। तो इसलिए हम सब बहुत बेहद में रह करके सेवा करें, और सेवा जितनी करेंगे उतना राज्य की स्थापना सहज होगी, राजधानी बन रही सेवा से। तो श्रीमत का बहुत बड़ा विस्तार है, अलग प्रकार से आज श्रीमत की बात हमने आपको सुनाई है, क्लास दूसरा होता है लेकिन अलग प्रकार से बताया। ज्ञान की सब्जेक्ट के लिए श्रीमत, योग के बारे में श्रीमत, धारणाओं के लिए श्रीमत, और सेवा के लिए श्रीमत। चारों सब्जेक्ट पर अगर ध्यान देंगे तो पूरी मुरली आपको याद आ जाएगी। इन्हीं पर श्रीमत मिल रही है, और इस श्रीमत पर चलेंगे तो ये श्रेष्ठ जीवन है ही। तो ध्यान रखना, श्रीमत पर चलने वाले ये मन बड़ा मत डिस्टर्ब करता है, मन मत अपनी मत ऐड कर देता है, और फिर दूसरी पर मत, दूसरे की मत ऐड हो जाती। तो मन मत और पर मत, इससे बच करके रहेंगे तो श्रीमत बहुत सरल रीति से पालन कर सकेंगे। कभी भी ऐसे नहीं कहना, ये मन तो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, बाबा कह रहा है और आपका मन कह रहा है ये संभव ही नहीं है, बाबा ने कराया है, बनाया है, बने हैं ऐसे, तो मन की मत को सुनना नहीं, नहीं तो बहुत कमजोर मन बना देगा। बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए हम सबको अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है, 10 बज गया। ओम शांति।
ओम शांति। श्रीमत की पालना का रिजल्ट मिला, यहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ से यहाँ आए, आखिर विजय किसकी हुई? योग भट्टी। हाँ, तो पूरी कुल मिला के क्लास से हमने यही सीखा कि हमें श्रीमत पर दृढ़ रहना है, और जब ब्राह्मण जीवन बन जाता है तो उसमें सबसे बड़ी श्रीमत जो डिस्टिंक्शन मार्क्स दिलाती है वो है योग का सब्जेक्ट। जितनी हमारी माइंड की क्लैरिटी होती है, जितनी बाबा से हमारी नजदीकी होती है, तो हमारा निर्णय गलत नहीं हो पाता, एक्स्ट्रा हेल्प भी हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो आज ये प्रैक्टिकल रिहर्सल हुई, और आप सब भाई साहब के शुभ संकल्प, दृढ़ता के संकल्प में, शुभ भावना में हम बंधे हुए थे सभी। इसलिए हमने ये प्रैक्टिकल आज की इस अनुभव से सीखा कि हमें सदा दृढ़ता से सफलता को पाना है, अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, और उसका आधार है श्रीमत, और उससे ही हमारी श्रेष्ठ जीवन बनती है। यही भाई साहब ने हमें इतने बृहत अनुभव के आधार से, सूक्ष्म ज्ञान की धारणाओं के आधार से, योग की गहन अनुभूति के आधार से, सतयुगी सृष्टि के उदाहरण देकर, मुक्त अवस्था का उदाहरण देकर आपने हमारे मन मस्तिष्क में भली भांति भर दिया कि अब हम कभी भी मनमत परमत पर, बोलो बोलो, पक्का वायदा। हाँ, और श्रेष्ठ जीवन श्रीमत के आधार से बनाएंगे, शक्तिशाली जीवन। थैंक यू भाई साहब। सबने पत्र लिखा आज बाबा को शिक्षक के रूप में, अच्छा लगा। बाकी हाथ नहीं उठ रहे हैं, सबने लिखा। हाँ, थैंक यू। और अच्छे से कल भी लिखना है हमें, कल धर्मराज के रूप में बाबा को पत्र लिखना है।